ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने ये बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही।
पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है।
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख लंबे समय से कायम है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है।
सिंधु जल संधि पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को भारत में अपनी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप गतिविधियां न करने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। देश का रक्षा बजट 2013-14 में 2,53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि रणनीतिक सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। इससे भारत एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बन गया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने मणिपुर में 2023 में हुई जातीय हिंसा से जुड़े अपहरण और हत्या मामले में उग्रवादी संगठन कांगलीपा कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स वार ग्रुप के एक प्रमुख कैडर को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पिछले साल नवंबर में मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक महिला की नृशंस हत्या और हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा घरों को लूटने और जलाने के मामले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की तिथि निर्धारित की है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक बयान में कहा कि राजपत्र अधिसूचना द्वारा इसे अधिसूचित कर दिया गया है। पहले धनतेरस पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। नेपाल में सागर माथा संवाद शुक्रवार से रविवार तक काठमांडू में आयोजित होगा। इसमें 12 देशों के 145 उच्च स्तरीय शीर्ष प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में समकालीन मुद्दों पर वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चर्चा होगी। 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में आकर्षक रेड कार्पेट और रंगारंग समारोह के साथ आरंभ हो गया है। 12 दिनों के इस महोत्सव में विश्व सिनेमा की शानदार फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। फिल्म महोत्सव में 22 फिल्में प्रतिष्ठित पाल्मे डी'ओर पुरस्कार पाने के लिए स्पर्धा में हैं। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, प्रियांशु राजावत, उन्नति हुड्डा, मालविका बंसोड़ और गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली की महिला डबल्स जोड़ी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के मुख्य ड्रॉ में अपना अभियान आरंभ करेंगे। रोम में इटालियन ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और उनके चेक जोड़ीदार एडम पावसेक के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में हार के बाद भारत का अभियान समाप्त हो गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।